नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के स्थापना दिवस के अवसर पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाल ही में स्वीकृत बायोइथरी नीति भारत में हरित परिवर्तन और आर्थिक विकास में योगदान देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्रों को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने तूफानी चक्रवात दाना प्रभाव से बचाव और राहत कार्यों के लिए उड़ीसा में 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 17 टीमें तैनात की है। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना की याद दिलाता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार के पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के फैसले पर भगवान बुद्ध के विचारों में विश्वास करने वाले लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि वे श्रीलंका की राजधानी में पाली एक शास्त्रीय भाषा विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के विद्वानों और बुद्ध भिक्षुओं के आभारी हैं। इस पैनल चर्चा का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के स्थापना दिवस के अवसर पर हिमवीरों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईटीबीपी के जवान सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों और कठिन जलवायु परिस्थितियों में लोगों की रक्षा के लिए वीरता और समर्पण के प्रतीक के रूप में तैनात है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्य के दौरान बल के जवानों के गौरवपूर्ण तथा प्रेरक प्रयासों की भी सराहना की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने के लिए सरकार सभी तरीके की उन्नत तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रही है। आज नई दिल्ली में ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने सड़क निर्माण में उन्नत तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली इंजीनियरों को सड़क निर्माण में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि मोटर चालकों के लिए सड़कें अधिक सुरक्षित बनाई जा सके। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाल ही में स्वीकृत बायोइथरी नीति भारत में हरित परिवर्तन और आर्थिक विकास में योगदान देगी। बायोइथरी नीति का उद्देश्य देश में उच्च स्तर के जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत जर्मन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के शासन में देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार विकास हुआ है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दुनिया का रणनीतिक स्तंभ बताते हुए कहा कि भारत के अंतरिक्ष अभियानों ने हाल ही में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। डॉ. सिंह ने इस बात पर भी खुशी जताई कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने दुनिया भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत और जर्मनी के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में और मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समर्पित 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित वेंचर कैपिटल फंड को फंड संचालन की अवधि में 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। निवेश के अवसरों और फंड आवश्यकताओं के आधार पर औसत तय राशि 150 से 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो सकती है। यह फंड रणनीतिक रूप से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना आज देर रात उड़ीसा में भीतरकनिका और धामरा के बीच समुद्री तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में चक्रवात के टकराने के दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। यह प्रतिक्रिया कल सुबह तक जारी रहने की संभावना है। इसका क्षेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह भीषण चक्रवात अभी पारद्वीप से 210 किलोमीटर और उड़ीसा तट पर धामरा से 240 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल के खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात के कारण उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक जिले के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि राज्य के अन्य 9 जिलों में भी तूफान के प्रभाव से तेज बारिश होगी। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने और जाने वाली उड़ानों को आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक रद्द कर दिया गया है। तटीय क्षेत्रों के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुदशीय राहत केंद्रों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कई सरकारी संस्थान कल तक बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बड़ी संख्या में रेलगाड़ियां भी रद्द की गई है। मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने तूफानी चक्रवात दाना प्रभाव से बचाव और राहत कार्यों के लिए उड़ीसा में 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 17 टीमें तैनात की है। एनडीआरएफ के उपमहानिरीक्षक मोहसिन शाहिदी ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया, उड़ीसा के प्रभावित इलाकों में मौजूद 1,70,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्य के 10 अन्य तटीय जिलों के साथ साथ उड़ीसा का भद्रक जिला सबसे अधिक प्रभावित होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण एप्स ट्रामा सेंटर में 5 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। मॉड्यूलर ओटी से हर महीने लगभग 2,500 रोगियों को सेवा प्रदान किए जाने की उम्मीद है, जो इसकी मौजूदा संख्या से 2 गुना है। मॉड्यूलर ओटी उपचार को बढ़ाने और संक्रमण को कम करने के लिए पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से एकीकृत है। ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर कामरान फारूक ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ओटी छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए डेमो रूम, लेक्चर थिएटर या दुनिया में कहीं भी सर्जरी को स्ट्रीम कर सकते हैं। सरकार ने देश में डायमोनियम फोस्फेट डीएपी उर्वरक की कमी से संबंधित मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा है कि यह भ्रामक और तथ्यात्मक स्थिति से परे है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि डीएपी पर सब्सिडी बिल्कुल भी कम नहीं की गई है और उसकी अधिकतम खुदरा कीमत कोविड के समय से ही 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग रखी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रवि वर्ष 2024 के लिए डीएपी की सब्सिडी में वृद्धि का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा रबी 224-25 के 2024-25 के लिए कुल बजटीय आवंटन बढ़ाकर 24,475 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कई भू राजनीतिक कारकों से डीएपी की उपलब्धता कुछ हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि इस वर्ष सितंबर से नवंबर की अवधि के दौरान उर्वरक विभाग द्वारा डीएपी की उपलब्धता में वृद्धि के लिए गहन प्रयास किए गए हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया, जो खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की एक और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान की 84 सीट के से करीलाल ननोमा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा, मजवान सीट से चूसी स्मिता मौर्य और फूलपुर विधानसभा सीट से दीपक पटेल को मैदान में उतारा गया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों का चयन किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करने और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध करानी है। पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की 256 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे नेपाल पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। आज नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अमरावती के रास्ते इरुपलम और नामबुरू के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।